ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय बनारसी लाल शाह जी। हम सभी हाथ एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बिहार की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1973 में आपने होम्योपैथी में DHMS पूर्ण करने के पश्चात आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपने मेडिकल से जुड़े अनेक गतिविधियों को संस्था में कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। आपके व्यापक दृष्टिकोण, उत्साहपूर्ण स्वभाव और लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण संस्था ने आपको अनेक पदों से सम्मानित किया है। 1985 से राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाली मेडिकल विंग्स के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। शांतिवन में आप एवर हेल्दी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर के आप डायरेक्टर है। माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के ट्रेजरर भी है। पूरे भारत में आपके नेतृत्व में हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। 40 से भी अधिक होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन माउंट आबू में आपने किया है। सारी दुनिया स्वस्थ रहे इस उद्देश्य से भारत भर 175 से भी अधिक होलिस्टिक हेल्थ फेयर लगाए गए, जहां पर करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए आपने बड़ी संख्या में सेमिनार, शिविर, प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टरों के लिए आपने माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा चलाए गए विलेज आउटरीच कार्यक्रम, जिसमें माउंट आबू के आसपास के आदिवासी समुदायों की सेवा में आप भी आपकी अग्रसर भूमिका रही है। तो भ्राता जी का ये सौभाग्य रहा कि इन्होंने दीदी दादियों के संग रहते हुए पालना ली है। तो अभी हम सुनते हैं भ्राता जी से दीदी दादियों के संग के अनुभव। भ्राता जी,
थैंक यू दीदी। ओम शांति। कितनी भाग्यशाली आप सब आत्माएं हो, आपके भाग्य को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो भी परमात्मा के बच्चे हैं वो भाग्यशाली हैं, लेकिन उसमें भी पद्मापदम भाग्यशाली आप लोग हो कि आज दीदी के पुण्य तिथि पर मधुबन में आप लोग उपस्थित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य का काम या दीदी के बहुत नजदीक रहे होंगे, चाहे सतयुग में, त्रेता में या पूरे 84 जन्मों में, जो कि इस महान पुण्य तिथि पर 10-12 लाख ब्राह्मणों में से आप सब यहां उपस्थित हो, तो आपको देख करके मुझे बहुत गौरव हो रहा है, खुशी हो रहा है कि हमारे आसाम धरनी के, आसाम के भाई बहने कितने लक्की हैं। दूर हैं, लेकिन परमात्मा के दादियों के दिल में हैं, ऐसा वासना आ रही है आप लोगों से। तो आज दीदी जी का पुण्य तिथि है, तो दीदी जी का कहां से सुनना चाहेंगे? जब यज्ञ में आई है तब से, या उनका लौकिक जब ये हुआ है तब से? कहां से सुनाएं आपको, ये बताइए। लौकिक से शुरू करें। दीदी जी लौकिक में बहुत धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ, सिंध हैदराबाद में। बहुत उन दिनों में दीदी की फैमिली का बिजनेस सिंगापुर जापान विदेशों में था। अब आप सोच सकते हैं कि कितने धनवान होंगे। बचपन से दीदी का नाम गोपी था और सचमुच वो गोपी बन करके ही रही। अभी परमात्मा को प्राप्ति नहीं है लेकिन गोपी बन करके श्री कृष्ण के साथ उनका बहुत प्यार शुरू से। दीदी इतनी रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ लेकिन दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई स्कूल वगैरह नहीं गई थी। बड़े रॉयल फैमिली में अच्छे परिवार में जन्म होने के कारण बच्ची थी जो उनके दिल में हुआ। माँ बाप ने कहा कि ठीक है नहीं पढ़ना है कोई हर्जा नहीं, लेकिन उनको भक्ति में बहुत प्रेम था। छोटेपन में उनकी मैरिज हो गई और फिर भी मैरिज होने के बाद अपने ससुराल गई, वहां भी भक्ति ही था, कोई लौकिकता उनके जीवन में नहीं था। इतने धनी इतने रिच फैमिली की थी लेकिन वो पार्ट टाइम निकाल करके घरों में अपने लौकिक घर में सिलाई करती थी। लोग उनके रिश्तेदार कहते थे ये आप क्या कर रही हो। तो दीदी का कहना था कि भाई देखो दूसरों को कमाया हुआ धन हम दान करते हैं किसी को देते हैं तो उतना भाग्य मेरा नहीं बनेगा जितना मैं स्वयं काम करके कुछ पैसा अर्न करके। मैं अपने लिए नहीं, मुझे कल रोटी खानी है उसके लिए मैं नहीं कर रही हूं, मुझे जो कुछ कर रही हूं वो दान के लिए कर रही हूं, अपनी कमाई से दान करूंगा। देखो कितनी सोच उनके, धन बहुत है कोई कमी नहीं है, कितना भी दान करो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दीदी की सोच ये धन औरों ने कमाया है वो धन हम दान करते हैं तो इतना मेरा भाग्य नहीं बनेगा जितना मैं अपने से कमा करके किसी को दान करूं। इतनी सोच दूरंदेशी लौकिक में दीदी का बुद्धि था। मैरिज होने के बाद अपने ससुराल आई तो बाबा दीदी को तो अंदर में ख्वाहिश थी, अंदर में इच्छा थी कि हम श्री कृष्ण को पाऊं। तो बाबा सत्संग ओम की ध्वनि कराते थे, लोग ट्रांस में चले जाते थे। ये आवाज सिंध में फैल गया कि बाबा के पास ओम मंडली में आप जाएंगे आपको साक्षात्कार होगा, कृष्ण की दीदार होगा, श्री नारायण का दीदार होगा, देवताओं का दीदार होगा, साक्षात्कार होगा। सब लोग बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत वहां थे उनको छोड़ करके उनके शिष्य थे, वर्षों से उनके सत्संग में जाते थे, कुछ साक्षात्कार या कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। जैसे आजकल हम सत्संग में हमारे परिवार के लोग जाते हैं या और दुनिया जाती है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन ये आवाज फैल गया कि भाई बाबा ओम की ध्वनि कलकत्ता से आए हैं, ओम की ध्वनि लगाते हैं लोग ट्रांस में चले जाते हैं। दीदी भी सुनी आ गई, दीदी बैठी बाबा ओम की ध्वनि लगाए तो दीदी जैसे बैठी बाबा में श्री कृष्ण उनको दिखाई दिया। दीदी की इच्छा पूरी हो गई, जो संकल्प था मुझे श्री कृष्ण का दीदार हो, सामने बैठी है, ट्रांस में नहीं गई है, बाबा ओम की ध्वनि लगा रहा है, देख रही है कि वो श्री कृष्ण की ध्वनि है। सत्संग पूरा हुआ, दीदी से क्वेश्चन किया, बाबा ने दीदी ने बाबा से क्वेश्चन किया, बाबा मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो पतिव्रता थी दीदी। बोली कि नहीं, पति ईश्वर के समान है, मैं शादीशुदा हूं, मेरे गुरु कहिए, ईश्वर कहिए, मेरा पति है। तो बाबा ने बहुत सरल रीति से कहा, बच्ची गुरु की तो कोई बात ही नहीं है, हमने कहा नहीं कि आप मुझे गुरु बनाओ, ये जरूर कहूंगा, ये हमारा ये रहेगा कि नहीं अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। दीदी को ये बहुत अच्छा लगा और दीदी सत्संग पूरा हुआ घर चली गई, जाकर के अपने मम्मी लौकिक मां को भी सुनाया, बहन को भी सुनाया, सबको अच्छा लगा। दूसरे दिन मां बहन और उनका दादा वो भी आने लगे, सारा परिवार आने लगा। अंकल के दोनों अंकल की दोनों बहनें और चाची कहेंगे ना, तो वो तीन और ये तीन छह लोग आने लगे। उसका दादा बहुत रईस, बहुत पैसे वाला था, वहां का मुखी था, मुखिया जिसको बोलते हैं, सरपंच जो बोलते हैं, तो मुखी था। तो सारे सिंधी लोग बोले कि दादा आप कहां जा रहे हो, हमारा परिवार टूट रहा है, परिवार सब ओम मंडली में जाता है, वहीं रह जाता है, और सारा घर में आकर के सारा दिन ओम मंडली की ही चर्चा होती है, पारिवारिक इन लोगों का कोई ये नहीं है, इनके जीवन बदल गया है, आप उस सत्संग में आप नहीं जाइए। तो दादा को तो मना कर दिया, वो नहीं आए, लेकिन क्योंकि मुखी थे, लोगों की बात माननी पड़ती थी, तो दीदी को अब उन्होंने बंधन डाला कि भाई दीदी भी नहीं जाए, लेकिन नहीं, दीदी बहुत पक्की थी, बहुत मन बहुत, कितना भी बंधन डाला, पति ने थोड़ा थप्पड़ लगाया होगा, एक बहाना बन गई, तो दीदी को पति ने कुछ थप्पड़ लगाया, कुछ किया, तो दीदी रोते हुए अपने लौकिक घर गई, मम्मी के साथ बाबा के घर आ गए। बाबा देखा कि इतनी रईस फैमिली के तीनों मां भी आ गई, दोनों बहनें भी आ गई, तो बड़ी ये हो जाएगा, तो बाबा तो शिव बाबा का साथ था, तो बाबा को यह हुआ कि नहीं, इनको आश्रम में नहीं रखेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे, सामने मकान ले लिया, और मकान में वो तीनों और अंकल के वो तीनों छह लोग वहां रहने लगे। लोग आए कि हमारे परिवार के आपने रख लिया, भाई देख लो आपके परिवार के कोई कहां है भाई, अब तो सामने दिखाई देते हैं, वो घूमते फिरते हैं, अब सामने बंगला में जाकर के देखिए, तो लो तो अपना बंगला एक करके भोजन यज्ञ में करते थे, क्योंकि सारा दिन लोग वहां थोड़ी आते थे, यज्ञ में करते थे, रहने के लिए, दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बाहर हैं। छोटे छोटे बच्चे आ गए यज्ञ में, ओम की ध्वनि सुन करके, बहुत हंगामा सिंध में हुआ, लेकिन बच्चे भी बहुत पक्के। तो दीदी बहुत शुरू से उनका बुद्धि बहुत तेज था, तो दीदी बाबा ने कहा कि बच्ची तुम वहां दो चार मशीन सिलाई का ले लो, और हम इन हॉस्टल के बच्चों को भेजेंगे, सिलाई इनको सिखाओ। तो दीदी वहां सिलाई स्कूल खोल दिया अपने बंगलों में, जो आए वो भाई ये बच्चे सिलाई, दीदी सिलाई सिखा रही है, तो आश्रम में है नहीं, भाई तुम अपने घर चलो, तुमको इतना प्रॉपर्टी है, ये क्या कर रही है? तो नहीं, मैं अपने पांव पर रहूंगी, अपने हाथ से कमा करके अपना जीवन यापन करूंगी, मुझे वो धन नहीं चाहिए, सत्संग की बात अब नहीं हो रही है। युक्ति से फिर लोगों ने, तो दीदी बहुत स्ट्रांग, उनकी मां भी बहुत स्ट्रांग, क्वीन मदर उनके मां का नाम था, सचमुच क्वीन मदर के आप बहनों ने देखा है, जो देखा है हाथ उठाए, नहीं, दीदी को जो देखा है हाथ उठाए, कोई नहीं देखा है, ओहो, तो क्वीन मदर जैसे फरिश्ता, एकदम फरिश्ता, छोटा कद, सफेद बाल, तो सब अब लोग अभी उनका कुछ ये नहीं, केस भी बाबा पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो अपना बंगला लेकर के और वो ये कर रहे हैं, सिलाई मशीन का स्कूल खोल दिए हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, कोई भी काम कोई भी धंधा कोई कर सकता है। तो फिर उनके बच्चों के छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए ये किया, लोगों ने हंगामा किया, बाबा बच्चों को लेकर के समुद्र के किनारे सुबह सुबह घुमाने ले जाते थे, बहुत पालना बाबा ने दिया था। कहानी सुनाएंगे तो वो रह जाएगा दीदी की बातें। तो बाबा लौट के आए तो दरवाजे पर उनके सारे संबंधी 50-60 लोग लेटे हुए हैं। अब उनके ऊपर चढ़ करके कैसे हम अंदर जाएंगे, तो बच्चे भी वहां धूप में खड़े हैं, उनके माँ बाप उनके लोग कहते हैं कि भाई चलो घर, वो नहीं जाएंगे, हम तो बाबा के पास रहेंगे। कहानियां बहुत लंबी। तो कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट से जमा ये हुआ, समन आया, नोटिस आया कि आप बच्चों को इनके घर भेजिए। बाबा ने कहा कि ले जाइए जी। बच्चे घर में जबरदस्ती उनके माँ बाप ले गए। अब घर में गए बच्चे तो कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, कोई चीज के हाथ नहीं लगाए, चुपचाप योग करें। एक दिन हो गया, माँ बाप वहां खा रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, तो माँ बाप के अंदर भी नहीं जाता है क्योंकि माँ बाप का तो मोह होता है। तो दो दिन देखा, तीन दिन देखा, फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके बाबा के आश्रम में लौटा दिया कि बाबा आप ही रखो इनको, हमारे घर में ये लोग नहीं रहेंगे। इतना पक्का बाबा ने कर दिया था, बाबा को परख थी। इतने छोटे बच्चों में ये हमारे यज्ञ के मालिक होंगे, यज्ञ चलाएंगे, 3 साल 6 साल 8 साल के बच्चों में आपके घर में 10 बच्चे आ जाएं तो परख होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन बाबा को परख थी और बाबा उन बच्चों को बच्चों की तरह नहीं देखता था, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ठाकुर की तरह पालना देता था। जैसे ठाकुर को हम लोग भोग घर में लगाते हैं ठाकुर जी के, तो बच्चों को भी बाबा ठाकुर की तरह पूजा नहीं करता था, पूज्य बनाता था। कोई मार्केट में अच्छा फ्रूट फर्स्ट पहला फ्रूट आएगा, बाबा कितना भी मांगा होगा नहीं, ठाकुरों को खिलाने के लिए आप वो फल ले आओ, और बाबा अपने हाथ से काट करके खिलाते थे। सुबह उनको तैयार करके बादाम हनी उनके मुख में दे करके कहते थे बच्चे समुद्र के किनारे दौड़ करके आओ, इतना प्यार। रात को सोते थे तो मच्छरदानी हर बच्चे की होती थी, बाबा मम्मा रात को जा करके देखते थे किसी को मच्छर तो नहीं काट रहा, टार्च लगा करके देखते थे। गुलजार दादी अनुभव सुनाते थे कि हम लोगों की पालना जो मम्मा बाबा दीदियों ने किया है, दुनिया में कोई का पालना ऐसा नहीं होगा। राजा का लड़का, राजा सोया है, वो राजा उठ के जाएगा, देखेगा मेरा बच्चा कैसे सोया है। मम्मा बाबा रात को 10 बजे हर बच्चे को चक्कर लगाते थे। तो दीदी अब ये सब पूरा हुआ, दीदी तो बड़ी उम्र के थी तो उनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। दीदी ने अपना स्कूल खोला है, बकायदे बोर्ड लगा दिया है कि कोई भी सिलाई सीखना है तो यहाँ आ जाए, सिलाई स्कूल खोल दिया तो कुछ कोर्ट केस भी नहीं होगा। तो दीदी धीरे धीरे यज्ञ में रहना शुरू कर दिया। शुरू से दीदी पढ़ी नहीं थी, अब उन छोटे बच्चों को स्कूल तो बाबा भेजते नहीं थे, नहीं बाहर के दुनिया के मुंह नहीं देखना है। तो जो बड़ी हमारी दादियां थी, मम्मा थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि थी, तो ये लोग पढ़े लिखे थे, मैट्रिक पास थे। तो दादा आनंद किशोर उन दिनों में BSc थे, तो ये इनको बाबा ने कहा कि बच्चों को ये पढ़ाओ, तो अंदर में ही स्कूल खुल गया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उम्र में बड़ी थी, जैसे दीदी थी, दीदी की माँ थी, तो प्रौर शिक्षा शुरू कर दिया, भाई जो बड़े हैं उनको भी पढ़ाओ, कम से कम अपना नाम लिखना शुरू करें। तो दीदी को मम्मा पढ़ा रही थी, तो बोला कि राम लिखो, तो दीदी राम लिख दिया, मोहन लिखो, मोहन लिख दिया, गणेश लिखो, गणेश लिखा। तो मम्मा ने कहा कि धृतराष्ट्र लिखो, और धृतराष्ट्र लिखने में थोड़ा कठिनाई होती है, अब दीदी को आए नहीं लिखने, भाई दो बार मम्मा कहा, तीसरा बार कहा, लिखती क्यों नहीं, लिखो तो सही। तो धीरे से बोलते, मम्मा ये अंधों की क्यों नाम लिखवा रहे हो, ये नहीं कह रहे कि मेरे को आ नहीं रहा कितनी बुद्धि तीक्ष्ण, मम्मा ये अंधों की क्यों नाम लिखवा रहे, कोई और लोगों का नाम लिखो, हम लिख दे तो इतना बुद्धि मम्मा को, इतना तीक्ष्ण था। तो शुरू से मम्मा के साथ बाबा का, बाबा ने उनको ड्यूटी दे दिया यज्ञ की संभाल के लिए। जब 47 में बंटवारा हुआ, सब लोग आ गए इंडिया में, तो फिर उनके रिश्तेदार बोलने लगे कि नहीं, आप बाबा बच्चों को इधर लेकर के आइए, हम बच्चों से भी मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो बाबा ने सरकार को कहा कि हमको भी छुट्टी दीजिए, तो बाबा, सरकार ने बाबा को मना कर दिया कि नहीं। सब लोग सिंधी और हिंदू जो लोग थे निकल गए पाकिस्तान से, अपना सारा सामान बाबा को छोड़ करके गए, बाबा को नहीं चाहिए, तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। ओपोजिशन किए, वो सामान दे के गए, क्योंकि सामान कुछ लेके आ नहीं सकते थे पाकिस्तान से इंडिया में, तो छोड़ के गए, दुनिया भर का सामान कैंपस में ये हो गया। तो बाबा ने भी सरकार को कहा कि हम जाएंगे, तो सरकार ने कहा कि आपको कोई तकलीफ है तो हमको बताइए, लेकिन आपके रहने से हमारा पाकिस्तान पाक साफ है, आपके कारण हमारा पाकिस्तान सुरक्षित रहेगा, आप यहीं रहिए। बाबा चुप हो गए। फिर 47 में ये हुआ धीरे धीरे, और ये हुआ तो फिर भी बाबा का आदेश हुआ कि नहीं, यहां नहीं रहना है, कहीं पहाड़ पर जाकर के तपस्या आप लोग करो। तो दीदी को और तीन चार और बहनों को, दादानंद किशोर भी उसमें से, चार पांच का एक टीम बना करके भेज दिया इंडिया में कि आप लोग जगह देखो। सब जगह इन्होंने ढूंढा, कहीं जगह दीदी को पसंद नहीं आया। तो एक गंगेश्वरानंद स्वामी थे, बाबा के भी गुरु, लौकिक गुरु थे, दीदी दादियों के, सिंधियों के बहुत बड़े माने हुए गुरु माना जाता था। तो वो, उनको पता लगा, दीदी को भी पता लगा, गंगेश्वरानंद इंडिया में फलाने जगह है, तो वहां गए मिलने के लिए। वो बचपन से ब्लाइंड थे, लेकिन दूर से पहचान लेंगे कि फलाना व्यक्ति आ रहा है। तो दूर से दीदी को नाम लेके पुकारा, गोपी आप मिलने आ रही है, वो आओ आओ दूर से। तो इतना उनमें ये था तपस्या, वो तपस्वी, पहले के संत तपस्वी होते थे। तो दीदी उनसे मिली और दीदी ने पूछा कि बाबा ने हमको भेजा है, 400-500 भाई बहने हैं उनके लिए, कहां इंडिया में हम, वो इतना बड़ा भवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मिल नहीं रहा है, कहां हम जाएं। तो उन्होंने कहा कि मेरा आश्रम माउंट आबू में है, आप माउंट आबू जाओ, वहां ऋषि मुनियों की गुफा है, तपस्वी भूमि है, आप वहां जाइए, वहां राजाओं की कोठी है, राजाएं तो गर्मियों में आते हैं, बाकी तो सारा साल बंद ही रहता है। तो दीदी माउंट आबू आ गए, चारों तरफ माउंट घूमे, उनको कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि छोटे छोटे उनके बंगलो थे, कोठी थे। लास्ट में भरतपुर कोठी में लोगों ने कहा, अच्छा श्मशान के बाजू में भरतपुर कोठी है, आप वो भी देख लीजिए। दीदी ने खिड़की से, वो बंद था, खुला तो था नहीं कि अंदर जाके देखे, लेकिन खिड़की से देखा तो बड़े बड़े हॉल थे, बड़े बड़े ये थे। तो दीदी ने कहा कि चलो एक हॉल में कुछ बहने सोएगी, कुछ बच्चे सो जाएंगे, दूसरे हॉल में भाई सो जाएंगे, यहां फिर भी हमारा कुछ हो सकता है। दीदी ने भरतपुर राजा को मिले, भरतपुर राजा ने कहा कि आपको पसंद है तो आप रहिए, कोई हर्जा नहीं है। तो चाबी दे दिया, साफ सफाई करा करके बाबा को खबर गई, दीदी जाकर के बताई और बाबा ने सरकार को बोला कि नहीं इनके बच्चों के माँ बाप, हमको तो ये नहीं है, हम तो यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इनके माँ बाप बुला रहे हैं, अब वो इंडिया से पाकिस्तान में तो आ नहीं सकते हैं मिलने के लिए और बच्चे सबके प्यारे होते हैं, तो अब आप छुट्टी दीजिए, हम इंडिया में प्रस्थान करेंगे। तो सरकार ने एक आलपीन तक नहीं रखा, एक आलपीन तक नहीं, बोला कि नहीं जो कुछ है आप लेके जाइए। कहां वो सिंधी इनके मां बाप और हिंदू लोग एक आलपीन तक लेके नहीं आए, सब छोड़ के जाओ। और यज्ञ का एक आलपीन तक सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपका एक आलपीन भी नहीं रखेंगे। बल्कि उन्होंने अपने आदमी को दिया और स्टीमर में सब कुछ पैक करके और आ गए, ओखा बंदरगाह पर आ गए और वहां से आबू रोड ट्रेन में बैठे और आबू रोड आ गए। अब इतने लोगों के लिए ये नहीं था तो पैदल सिर पर अपना अपना होल डाल और इस अटैची लेकर के पैदल आ गए। आप वहां देखे होंगे हिस्ट्री हॉल में कि उनके सिर पर ये है, तो उस समय का फोटो है। तो आ गए, अब मई जून का महीना था, समुद्र के किनारे बचपन से रहे हैं, अब वहां ठंडी होती नहीं समुद्र के किनारे, और यहां आए मई में तो बहुत अच्छा मौसम, पहाड़ों की मौसम मई जून तो अच्छा है, जून से बारिश, जुलाई में खूब बारिश, अब सब बीमार होने लगे। वहां गर्म कपड़े नहीं थे, जरूरत नहीं थी, अब यहां ठंडी लगे और बेगरी पार्ट शुरू। देखिए पेपर, बाबा परीक्षा लेना शुरू कर दिया। पैसा बाबा का था, वहां पाकिस्तान में कुछ ये नहीं था, खा पी करके और पूरा हुआ, थोड़ा बहुत था आने में खर्चा हो गया। अब यहां आ गए तो अभी कहीं से आमदनी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, कुछ सामान आए लाए थे उसको बेच करके कुछ दिन वो भी चला। अभी इतना तो सामान नहीं लाए थे कि भाई पूरा जिंदगी बेचते रहे और खाते रहे, ऐसा तो कुछ था नहीं था। बेकरी पार्ट शुरू, एक तरफ ठंडी, गर्म कपड़े नहीं है, रजाई नहीं है, स्वेटर नहीं है, शॉल नहीं है, क्योंकि वहां होता नहीं है, जरूरत नहीं थी। एक तरफ बेकरी पार्ट, अब वो बीमार हैं तो उनको दवाई का पैसा नहीं है, उनको ठंडी लग रही है तो स्वेटर खरीदने का पैसा नहीं है। चारों तरफ से, जैसे कि कहते हैं ना किसी के पर मुसीबत पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ता है, चारों तरफ से ये हुआ। लेकिन बाबा का हौसला बहुत बुलंद था, बाबा को शिव बाबा में बहुत फेथ था। जब भी योग में बैठते थे जैसे कि बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा को निश्चय था ये भगवान का यज्ञ है, मेरा यज्ञ नहीं है, मैं इस यज्ञ में आया हूं, यज्ञ भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, मेरे नहीं है। तो उनको बच्चों को चिंता नहीं होती थी, अपने भविष्य के लिए सोचते रहते थे, अरे मैं इस बूढ़ा शरीर छोड़ूंगा, कल जाकर के नारायण बनूंगा, कल मिचनू बनूंगा, बाबा को इतना ख्याल। दीदी को बाबा से बहुत स्नेह, जब भी देखती थी तो श्री कृष्ण के रूप में ही देखती थी, श्री नारायण के रूप में, तो उस भावना से दीदी बाबा के साथ रहती थी, बाबा के साथ ये करती थी। तो एक बार की बात है, बाबा मुरली चला करके रोज सुबह सुबह मुरली सुनाते थे, सुना करके रूम में आए तो दादियां पीछे पीछे आई, बाबा को नशा था आ करके, और घुटने के बल पर चलने लगे, छोटा सा था तो रूम था, जो आप बेड बाबा को देख रहे हैं और जो गद्दी देख रहे हैं बस उतना ही था, ये जो तीन रूम तोड़ करके इतना बड़ा रूम बनाया गया है, जो आज बाबा के कमरे में हम सब बैठते हैं, आप लोग बैठते हैं, इतना बड़ा रूम नहीं था। तो बाबा घुटने के बल पर चल रहे, अरे दादियां दरवाजे से देखती, बाबा ये क्या कर रहे हो, अरे बच्ची ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल मिचनू बनेगा, ऐसे स्वर्ग में चलेगा। नशा, ये नहीं है कि इतने बच्चे हैं इनके नाश्ता क्या होगा, वो सोच नहीं है, नशा, अरे ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, श्री कृष्ण बनेगा। इतना बाबा को नशा था। पेपर को बाबा का जरा भी परवाह नहीं था, ये पेपर भी नहीं समझता था। वो भगवान जाने, भगवान का पेपर है, उसको पास करना, मुझे क्या करना, मुझे तो श्री कृष्ण बनना है। धुन में था, लगन में था, इतना तपस्या रात रात बैठ करके। थोड़ी सी दादी का जो रूम है ये यहाँ, और ट्रेनिंग सेक्शन थोड़ा बना हुआ था ये, तो बाबा इस टूटी हुई इसमें रहते थे। बारिश खूब रात को टपकता था पानी बिस्तर पर, तो दादियां बोलती थी, बाबा क्यों कष्ट कर रहे हो, आप आ जाओ नए मकान में ना। नहीं, शिव बाबा इस बूढ़े मकान में आया है, ये बूढ़ा बाबा नए मकान में नहीं जाएगा। इस तरह की बाबा को बहरा। तो अब बाबा इतना नशा, तो दीदी सरायक का ये थी। फिर बाबा ने, शिव बाबा ने संदेश दिया, इन लोगों को इतना ज्ञान दिया है, ज्ञान से पालना किया है, इनमें ज्ञान भरा है, ये जाकर के बांटें। कहां से सोर्स होगा, कहीं से मनी ऑर्डर आता था, कुछ आता था, यज्ञ का काम चलता था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 3 साल बेगरी पार्ट रहा, लेकिन 3 साल में गुलजार दादी बड़ा नशे से अनुभव सुनाती थी कि ऐसा दिन नहीं आया कि हम भूखे सो गए हों, ऐसा दिन नहीं आया। पहले शिव बाबा का मैसेज आता था, बच्चे इस 1 सप्ताह 15 दिन ढोढ़ा और छाछ खाना है, हिल स्टेशन, किसी को बुखार है, किसी को डायरिया है, कोई खिचड़ी नहीं है, कोई चावल नहीं है, ढोढ़ा सास सबको खाना है। डायरिया वाले भी खा रहे हैं, बुखार वाले खा रहे हैं, सबको ठीक हो गया। निश्चय, भगवान में निश्चय। अब वो बातें, बहुतों को संशय आने लगा, भाई ये कब तक चलेगा, दिखाई नहीं देता है जो कहीं से आने वाला है। तो लोग बाबा से छुट्टी लेकर, बाबा हम लौकिक में जाएं, वहां उनकी सेवा करेंगे और मधोगिरी भेजेंगे। हां बच्ची क्यों नहीं, बाबा नहीं भेज रहा है, वो बाबा से छुट्टी लेकर के जा रहे हैं, और लौकिक में गए, फंस गए, लौट के नहीं आए। मधोगिरी भेजना क्या, खुद ही वहीं फंस गए तो दूसरों की क्या चिंता करेंगे। लेकिन कुछ दादियां हमारी बोली कि नहीं, मैं कहीं लौकिक में नहीं जाऊंगी, रहूंगी तो बाबा के साथ, मरूंगी तो बाबा के साथ, कहीं नहीं जाना। फिर बाबा ने इन लोगों को सेवा पर भेजा, दीदी को दिल्ली भेजा। दीदी इतनी रईस फैमिली के, एक बार इनके घर में गए थे हम, इनके सीढ़ियों पर गलीचा लगा हुआ था, दीदी कोई लेटर कुछ भेजा था, मुझे याद नहीं है, बॉम्बे गए थे किसी पेशेंट को लेकर के, तो बोले कि मेरे लौकी घर में जाना, ये एड्रेस है, गए। मैंने इतना रईस फैमिली के, वो दीदी को बाबा ने दिल्ली में भेजा। दिल्ली में स्टेशन पर उतर करके, अभी कहाँ जाए हम, मैं अभी गुवाहाटी में आएंगे तो आप लोग रिसीव करने आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे। अब दीदी को कौन रिसीव करे, कोई अपना हो तो रिसीव करे ना, कोई नहीं। दीदी बाहर कुली से पूछा, कहाँ बाहर किधर जाते हैं, दीदी इधर से चले जाओ। बाहर गए, रिक्शा वाले कुली कैसे लोग होते हैं, हैरान, कभी अज्ञानियों को मुंह नहीं देखा है। फिर भी शिव बाबा के बल, हिम्मत, पूछा कि धर्मशाला कहाँ है, ये बाजू में धर्मशाला है। वो धर्मशाला में जाकर के दीदी गई, तैयार होकर के जमुना जी के कंठे पर, अभी कहाँ बैठेगी, जमीन पर तो नहीं। तो धर्मशाला में फटी हुई बोरी समझते हैं ना, बोरी था, वो बोरी लेकर के जमुना के तट पर दीदी और मनोहर दादी, गंगे दादी बोरी बिछा कर तपस्या। दीदी की तपस्या इतनी पावरफुल थी, दीदी को किसी को दीदी दृष्टि देती थी, ट्रांस में चला जाता था, उसको साक्षात्कार हो जाता था। तो वहां तीनों देवियां बैठ गई है, माताएं बहने जमुना जी में गई है, स्नान करके पूजा करके निकलती है, तो गई तो कोई नहीं था, आई तो ये तीन देवियां, और इनके चेहरे, इनके चमक, इनकी रूहानियत देख करके हैरान, ये कौन है, कहां से आ गए। तो बड़ा हिम्मत रख करके कुछ माताओं ने पूछा, आप कौन हो, और तो पहाड़ से आए हैं, किस लिए आए हैं, तो योग सिखाने के लिए आए हैं, हमको योग सिखाएंगे। हां क्यों नहीं, बैठो, सत्संग शुरू हो गया। माताओं ने सत्संग पूरा हुआ पूछा कि आप कहां रहते हो, फलाने धर्मशाला में रहते हैं। तो नहीं, वहां नहीं रहना, हमारा बंगला खाली है, वहां चलो, सामान उठाओ, वहां बंगला में आ गए। बाबा मदद करता है। और मधोगिरी फिर वहां कोई कुछ भेजता था, दीदी अपने लिए नहीं, बाबा के यज्ञ में भेजो, दादियों को यज्ञ के प्रति इतना प्यार था, बाबा को इतना, बाबा के प्रति इतना ही था, कोई इतना बड़ा तरबूज दे दिया, अभी गर्मी के दिन है भाई, ये तीन बहने हैं, इतना बड़ा तरबूज तो खाएंगे ही ना, एक टाइम नहीं खाएंगे, दो टाइम में खाएंगे। उन्होंने कहा इतना बड़ा तरबूज बाबा को भेजो, अभी पार्सल के लिए एक लिए पैसा नहीं था, वो तरबूज पर लिख दिया, बाप दादा आबू रोड ब्रह्मा कुमारी, और गाड़ी में डाल दिया, वो लुढ़कते पड़कते आबू रोड आ गया, आबू रोड में उतार दिया, वो फोन गया, भाई आपके एक तरबूज आया है। प्यार, इतना जिगरी प्यार, तो इतना मतलब कि अब वहां से यज्ञ की शुरुआत हुई है। तो दीदी सेवाओं को फैलाया चारों तरफ, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, उधर सब जगह सेवाएं फैलाई। मम्मा का, मम्मा अव्यक्त हो गए, मम्मा की कहानी भी अलग है। बेगरी पार्ट था, ये हॉल बना, इतने बड़ी बड़ी सीढ़ियां दीदी नहीं चढ़ सकती है, तो दीदी के लिए पीछे की सीढ़ी बनाया गया, इतनी छोटी छोटी, इधर से जाके देखना आप लोग, लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट तो अभी बना है। तो दीदी आती थी, योग कराते थे, दीदी इतनी पावरफुल, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन डायरी पेन साथ रहता था, डायरी पेन के बिना दीदी क्लास में नहीं जाती थी, नोट लिखती थी, और आकर के सीधी नाश्ता पर नहीं जाएगी, आकर के नोट से प्रश्न बनाती थी, और 10 बजे पोस्ट जाता था, तब तक जो कल लेटर जो आया है उसके जवाब देती थी, और उसके पीछे वो लिखती थी। अंतरदेशी उन दिनों में होता था, हम लोग कहीं पोस्ट भेजना होता था तो पोस्ट कार्ड मिलता था, भेजो, छुट्टी है घर वालों को, पोस्ट कार्ड। और दीदी दादी अंतरदेशी उन दिनों में 10-15 पैसे का होता था, ऐसे विदेश से फोन आ रहा है, पहले मुरली की पॉइंट सुनाएगी, बाद में उनकी बातें सुनेगी, इतना मुरली की दीवानी। गोपी थी ना, तो गोपी, रियल गोपी, मुरली से इतना प्यार, यज्ञ को उन्होंने ऐसे पालना किया, लेकिन बहुत ऑफिशियल थी, लेकिन बहुत जौली भी थी। जितना दीदी निकलती थी हम लोग डरते थे, दीदी आ रही है, हम लोग खाना खाते थे, यंग थे, आपस में बातें करते थे, दीदी की ये हुआ, दीदी आ रही है, चुप, भोजन कर रहे हैं चुपचाप, दीदी पूछती शिव बाबा याद है, जी दीदी याद है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना पावर, लेकिन इतना रमणीक भी थी। रात्रि क्लास दीदी कभी मिस नहीं करती थी, रात्रि क्लास दीदी 9 बजे क्लास में चली गई, हम लोग भागते थे, दीदी क्लास में चली गई, क्योंकि हिस्ट्री हॉल था, दीदी के नजरों में हम सब थे, थोड़े से भाई बहने थे, अभी तो हजारों हैं, कौन आता है कौन नहीं आता है कोई किसी को पता नहीं है, कौन किसी को देखता है। उन दिनों तो छोटा सा हॉल था, दीदी बोलती थी कौन नहीं आया, जा करके देखो उसको, रूम में सोया है, क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, इतना स्ट्रिक्ट। तो दीदी इतनी रमणीक। एक भाई बलदेव भाई जयपुर में रहते थे, थोड़े सांवले थे, डार्क स्किन था, उनकी दांत बाहर थी तो दांत चमकता था। तो हिस्ट्री हॉल में साउंड एंड लाइट के जो भाई बैठे हैं उनको कह देती थी, जब ये बैठे और समाचार सुनाए तो लाइट बंद कर देना, उसको पहले सुना देती थी, भाई तो सुना रहा है, लाइट बंद हो गई, अब उसके दांत चमकता है, सब हंस रहे हैं, दीदी हंस रही है। मन इतना जौली भी थी लेकिन इतना स्ट्रिक भी थी, इतना स्ट्रिक भी थी, तो मतलब दोनों का बैलेंस, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक है, इतना माँ की तरह प्यार देती थी। उन दिनों में हम डॉक्टरी पढ़ कर आए थे लेकिन हमारे को ड्यूटी मिली थी सूरज भाई के साथ खाना बनाने के लिए। सूरज भाई ने दो सुबह का चाय बनाने की ड्यूटी दे दिया था, नए थे तो चाय बनाते थे। अभी आज तो साधन है, लकड़ी को या कोयले को शेड बना कर रखते हैं ताकि उस पर पानी ना पड़े। उन दिनों में भंडारा ये नहीं था, भंडारा कहाँ था, जो बिस्तर शांति आश्रम के सामने बिस्तर वाला रूम है वो भंडारा, दो रूम और टेलीफोन एक्सचेंज, ये तीनों मिलाकर के भंडारा होते थे। अब उस पानी टपकता है वो लकड़ी से, उस लकड़ी से खाना बनाना है तो हम लोग खाना बना करके वो गीली लकड़ी को चूल्हे पर रख देते थे, कच्ची मिट्टी का चूल्हा होता था, वो गरम होता था तो लकड़ी भी गरम हो जाती थी, शाम को लकड़ी जलाते थे। एक दिन 2 बजे रात को आ गए लेकिन लकड़ी गरम नहीं हुई थी, वो चूल्हा फूंक रहे हैं लकड़ी जले नहीं, लोग चाय पीने आ गए। अच्छा इतनी बेगरी पार्ट था कि मिट्टी का तेल नहीं है कि तेल डालो और माचिस लगाओ जल जाए, वो भी नहीं, तेल खाने वाला तेल था, बेगरी पार्ट था, भाई खाने के तेल नहीं मिल रहा है मैं लकड़ी जलाऊं, ये भी दिल गवाही नहीं कर रहा था। तो फूंक फूंक करके, गुरुवार का दिन था, आंखें लाल हो गए, तो चाय तो बना दिया, फिर गुरुवार का दिन था भोग बना करके भोग लगा, फिर दीदी दादी अमृत पिलाती थी, छोटा सा परिवार था, पालना बहुत मिलती थी। तो मैं गया दीदी के पास बैठ करके, तो सिर पर हाथ रख करके मुख में जल अमृत दे रही है, बोलती भाऊ, मन भाई सिंधी बोलती थी, भाऊ आंख लाल है। हम बोला कि दीदी आज लकड़ी जल नहीं रहा था, फूंक फूंक करके धुआं लग गया है। अत नहीं, अपनी संभाल करो, सेवा भी करो, समा इतना मतलब पालना, जिससे माँ बच्चे की सेवा भी लेती है पालना भी देती है, इतना ख्याल रखते थे। ब्रह्मा भोजन खिलाती थी, हर गुरुवार को ब्रह्मा भोजन होता था। अब हम लोग तो यंग थे, मीठा चीज आया पहले खा लिया, मीठा चीज आया खा लिया, तो दीदी देखती थी क्या करते हैं लड़के लोग, फिर दीदी समझाती थी नहीं मीठा बाद में खाया जाता है, जी दीदी आगे से मीठा बाद में खाएंगे, माने एक एक चीज छोटी छोटी चीज। दीदी रमणीक थी, ये विवेकानंद उद्यान अभी बना है, उन दिनों में नकी लेक पर ये पहाड़ी होता था, वहां जाकर शाम के टाइम में थोड़े थोड़े तो लोग आते थे, 10 आए 15 आए 20 आए तो लेटर भेज देते थे, मधुबन में बहुत बड़ा सीजन चल रहा है 20 लोग आए, अभी तो 20,000 आते हैं, तभी भी कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है कि मधुबन में बहुत बड़ा सीजन चल रहा है, उन दिनों की बात कर रहे हैं। तो दीदी ले जाती थी और बोलती थी सबको योग करना है, और अपने यीशु दादी से सिक्का ले जाती थी 54, और यहां बोलती थी कि आंख बंद करो और योग में बाबा को याद करेगा तो ये देखो सिक्का लगा रहे हैं, सिक्का गिरेगा नहीं, पावरफुल योग होगा तो गिरेगा नहीं, कितना भी हिलाएगा गिरेगा नहीं, और योग नहीं होगा तो गिर जाएगा। अब कौन कहेगा कि हमारा योग कच्चा है, तो दीदी लगाती थी और धीरे से दीदी निकाल लेती थी और उसको बोलती थी अब आंख खोलो और तो सिक्का को हिलाओ गिराओ, और वो गिराता था हिलाता था, और सिक्का हो तो गिरे ना, वो तो दीदी अपने हाथ में ले लिया है, खूब लोग हंसते थे, मतलब इस तरह के दीदी जौली पालना करती थी। यहां आंगन में गुरुवार का भोग ब्रह्मा भोजन खिला करके कुर्सियों का वो ये करते थे, चेयर कंपटीशन या क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो कराती थी। जो थोड़े मोटे लोग होते थे तो धीरे से उनका कुर्सी खींच लेती थी, वो गिरते थे नीचे, सब खूब हंसते थे। माने दीदी का इतना इजी नेचर था, लेकिन ऑफिशियल थी। दीदी कहीं निकलती थी सब डरते थे। ला क्या होता है, ये डिसिप्लिन क्या होता है, यज्ञ का ला और डिसिप्लिन दीदी के टाइम में था। आज तो बहुत रिलैक्स हो गया है। दादी हमारी विदेश गई, प्रकाशमणि दादी, तो और रिलैक्स हो गए हम लोग, क्योंकि वहां के कल्चर देख करके आई। बोले कि यहाँ इतना हम टाइट करेंगे और इतना विदेशी आएंगे तो कैसे रहेंगे। धीरे धीरे दादी में भी वही संस्कार, महीने में 3-4 दिन तो पिकनिक होता था हम लोगों का, थोड़े सा थे। पूनम के दिन होगा, दादी ले जाएगी वहां पीस पार्क में, खीर जरूर, पूनम के हर पूनम को खीर बनेगा, गर्भारास होगा। माने इतना पालना, भले कुछ नहीं है पालना, सीजन नहीं है, एक दाल रोटी और सब्जी मिलेगी भाई, सीजन नहीं है, दाल रोटी सब्जी खाओ। इतना इकोनॉमी से, मतलब कि यज्ञ को उन्होंने बढ़ाया है। तो दीदी, बाबा ने अंत में जब बाबा को संपन्न बनना था, मम्मा अव्यक्त हो गई। मम्मा की भी कहानी है, कैंसर है और मम्मा जा रही है, उन दिनों में कैंसर की दवाई नहीं है, दर्द है, लेकिन मम्मा के चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा है, इतना पावर था। तो मम्मा बैठी थी आंगन में, बाबा कहीं से आए, मम्मा अंगूर पके हैं, ये अंगूर का बेल उन दिनों बहुत अच्छा था, अंगूर पके हैं बच्चों को खिलाएंगे। जी बाबा, ये नहीं कह रही कि अब बाबा मैं विदाई ले रही हूं, मैं जा रही हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, मैं अब सहन नहीं कर सकती हूं, मैं इस शरीर में नहीं रह सकती हूं। मम्मा मुख से नहीं कहा, जी बाबा। बाबा टोकरी लेकर के बैठ गए मम्मा के कुर्सी, मम्मा को हाथ में अंगूर देते गए। थोड़े देर में मम्मा का हाथ एकदम ठंडा हो गया, अंगूर दिया, अंगूर पड़ा है, मम्मा की आंखें खुली है, लाइट वैसा ही ब्राइट है। अब वो पावर हो तब तो दूसरे के हाथ में डाले। बाबा समझ गए कि मम्मा अब जा रही है। दादियों को बुला करके लेटा दिया, दृष्टि दे रहा है, दादियां दृष्टि दे रही, मम्मा वतन में गई। ये तपस्या उन दिनों में थी, इतनी पावरफुल तपस्या थी। तब तो ये यज्ञ चल रहा है ना, तो कैसे चले। अब दुनिया में देखे होंगे कि किसी का गुरु चला जाता है तो यज्ञ उनका संस्था डाउन हो जाती है। बाबा चला गया और संस्था दीन दुनी रात चौगुनी बढ़ गई और बढ़ रही है। आज के डेट में भी दादी नहीं है, बाबा नहीं है, दीदी नहीं है, कोई दादी नहीं है, एक दादी अगर है तो मौन में है, फिर भी यज्ञ कैसे बढ़ रहा है। बाबा चला रहा है। पहले यही यज्ञ था, यही दीदी दादी थे, कुछ काम करना होता था बाबा को बुलाते थे, पूछते थे, बाबा ये करूं। गुलजार दादी गद्दी पर बैठती थी बाबा के, बाबा आते थे, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी, सामने यीशु दादी नोट लेती थी, और बाबा एक एक चीज की डायरेक्शन देते थे और फिर काम होता था। आज के डेट में न दादी है, न दीदी है, न बाबा है, न गुलजार दादी है। क्या यज्ञ नहीं चल रहा है, मकान नहीं बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर नहीं बन रहे हैं, छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े मकान बना रही हैं, कौन करा रहा है। बाबा परमात्मा शिव बाबा उसको डायरेक्ट करा रहा है। दुनिया में भी आप देखेंगे, मां बाप आप लोग बैठे हो, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किसके किसको करते हो, पोतरे को करते हो, करते हो या नहीं करते हो। घर में पोतरा आ गया तो उसको ज्यादा प्यार करते हैं ना, बच्चों को तो नहीं करेंगे ना। उसी तरह अब शिव बाबा हम पोतरों को प्यार कर रहा है, पोतरों से काम ले रहा है, तो हम पोतरे बाबा के भगवान के प्यारे हैं और हमारे से बाबा करा रहा है। छोटी छोटी हमारी बहनों से बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े सेंटर बनवा रहा है। पहले अपने यज्ञ में किराए के मकान पर सेंटर हुआ करते थे, आज के डेट में 80% मकान अपने होते हैं, 10-20% मकान किराए के सेंटर होते हैं। तो कौन करा रहा? बाबा डायरेक्ट करा रहा। हमारी स्थिति, हमारी संभाल कौन कर रहा है? हमारी पालना कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। इतना हमारे को अनुभव होना चाहिए। तो दीदी, अब मम्मा अव्यक्त हो गई, दीदी उधर सेवा में थी, बाबा ने बुला लिया दीदी को कि अब आप आ जाओ मम्मा की जगह पर, आप रहो। तो मम्मा का रूम जो बाबा के पीछे का वो सिटिंग रूम दादी का है, वही मम्मा का रूम होता था। तो दीदी को मम्मा के रूम में रखा और दीदी इतनी इकोनॉमी के अवतार थी, लेकिन पालना बहुत करती थी। कोई वीआईपी यज्ञ में आ गया, उसकी इतनी पालना करती थी, इतनी पालना करती थी, उसको अपना अपने समान बना देती थी। एक बार दिल्ली से जज और वकील आए, इतनी पालना किया, इतनी पालना किया। तो जाने टाइम दीदी से मिल करके सौगात लेकर के जा रहे थे, तो दीदी ने कहा कि भाई अब दीदी को भी कुछ खर्ची दो। तो वो उन्होंने, बड़े पैसे वाले लोग थे, जज वकील तो पैसे वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप जो मांगो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत खुश थे, आप देंगे? हाँ। और तो 5 खोटे पैसे दे दो और 1 आना दे दो। वो हैरान हो गया, खोटे पैसे कहां से लाए, हमारे पास आए नहीं। तो दीदी राज बताई कि आप 5 विकार आपको देना है और रोज 1 बार आश्रम पर आना है। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि दीदी भल मैं बिजी हूं लेकिन 1 बार आश्रम पर आऊंगा। वो वकील सुप्रीम कोर्ट के थे, इतने बिजी थे, लेकिन दीदी की आज्ञा है कि 1 बार आश्रम पर आना है, तो आते थे 10-15 मिनट आकर के मुरली सुनते थे, 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठते थे। 1 बार उनके घर में डेथ हो गई, उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी करो, मैं 5 मिनट में आश्रम से आता हूं। आश्रम पर आकर के मुरली सुन करके, घर में डेड बॉडी है, सुन करके गए, इतना पक्के हो गए। और जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ तो इधर आकर के पूरा समर्पित हो गए, यही उन्होंने ये किया। तो कहने का मतलब कि दीदी वीआईपी सेवा क्या होती है, वीआईपी को पकड़ उनके अंदर में बहुत थी। अंग्रेज आते थे, दीदी क्लास नहीं कराती थी, लेकिन पावरफुल योग कराती थी। तो अंग्रेज बोलते दीदी हमको आपकी क्लास नहीं चाहिए, हमको योग कराओ। उनको दीदी की दृष्टि से, और दीदी शुरू से योग में बहुत पंक्चुअल, बहुत माने बहुत। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है दीदी का निकाला हुआ है, हर घंटे योग का एक ट्यून बजता है, ये दीदी का निकाला हुआ है। उन दिनों में 72-73 की बात कर रहा हूं, हम लोग आए तो शनिवार रविवार अखंड भट्टी चलता था, सोमवार मौन रहते थे, ये सब दीदी का निकाला हुआ कि नहीं सेवा हो रही है तपस्या भी हो, सबका चार्ट। एक कन्याएं आती थी छोटी छोटी, कॉलेज से आती थी, उनको ज्ञान योग में इतनी रुचि नहीं होती थी, उनको दीदी की नजर पड़ी, उनको बुलाते थे इधर आओ तुम मेरी सखी है, सखी बनोगी? वो खुश हो जाती थे, दीदी हमारे को सखी बना रही है तो क्यों नहीं बनेंगे। बोलते हाँ हाँ दीदी मैं आपके सखी रहूंगी। तो बोली कि अच्छा शाम को आना 4 बजे, और दीदी तैयार होकर के साड़ी बांध रही है, बोलती तुम मुरली सुनाओ मेरे को। अब उसको मुरली पढ़ने का, दीदी को मुरली सुनाना है, पढ़ने का रुचि बैठा दिया। 8 दिन यहां है, 8 दिन में उसको इतनी रुचि हो गई कि रोज रोज अब क्लास में आती है। इतना किसको कैसे ज्ञान में चलाना है, किसको अंदर कैसे धारणा करानी है, इतना पक्की दीदी थी। तो वो ज्ञान में भी ये करती थी और चलाती थी। तो इस तरह से मतलब कि दीदी का रोल, दीदी को अंत में, घड़ी भाग रहा है मैं देख रहा हूं, दीदी का हम, पहले मैं अकेले डॉक्टर था, अभी तो हॉस्पिटल खोल गया तो कितने डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। तो दीदी को, दीदी मेरे को बुलाती थी रात को 9:30-10 बजे, एक बार बीपी मेरा देख लो, तो मैं देखता था तो दीदी को बोलता था, दीदी आपका बीपी थोड़ा हाई है, आप सुबह उठना नहीं, रेस्ट करेंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दीदी बोलती थी, नहीं भाऊ मैं आपके बात नहीं मानूंगी, सुबह जो बाबा कहेगा वो करूंगे। और हिस्ट्री हॉल में मैं जाकर देखता था, दीदी पहले मेरे से भी पहले आकर के योग करा रही है, मैं पीछे आकर के सामने बैठ रहा हूं। इतना योग में रुचि था। अंत के समय में दीदी को क्या हुआ, एक बार बीपी के कारण थोड़ा सा सुबह उठी, उठने का आदत था, फ्रेश होकर के जाती थी, हम लोग तो मुंह धोकर के योग में आ जाते थे, दीदी नहीं, गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो स्नान करके योग कराती थी। तो दीदी आई तो दरवाजे पर लग गया, तो थोड़ा ये हुआ, तो दादी सबको संकल्प चला कि भाई दीदी को ऐसे कैसे हो गया। तो दीदी को बोला गया कि भाई उम्र हो गई है, थोड़ा आंख दिखा करके आइए। तो वो ऑपरेशन कराने के लिए उनको भेजा गया, गई ऑपरेशन कराने के लिए, आंख का ऑपरेशन, आंख के डॉक्टर देखा तो बोला कि आंख तो ठीक है, नजर भी ठीक है, लेकिन आंख के ब्रेन में जहां ब्लड सप्लाई होता है वहां एक गांठ दिखाई देता है। भाई अभी ये तो नई बात हो गई, चलो तो न्यूरो सर्जन के पास गए, तो उसने बोला कि हम सर्जरी कर देंगे। तो बाबा आए, पहली बार मधुबन छोड़ करके बाबा गाम देवी में आए, गुलजार दादी आ गई, बड़ी दादी आ गई और बाबा ने विदाई दिया। बाबा को पता था कि हमको मंगाना है, लेकिन दोष तो अपने ऊपर लेगा नहीं, भगवान इतना यह है कि अपना दोष किसी का नहीं लेता है। तो बाबा विदाई दिया और बोला कि कोई बात नहीं, बच्ची करा लो ठीक हो जाएगा। रात को विदाई बाबा मिल करके गाम देवी में, सुबह दीदी गई हॉस्पिटल में और भगवती न्यूरोसर्जन था, सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, दीदी होश में भी आ गई। और उन दिनों में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी ने भगवती को बुला लिया कुछ काम से, तो भगवती चला गया बॉम्बे से दिल्ली। इतने में दीदी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, दीदी कोमा में चली गई, फिर कोमा से आई नहीं। फिर वो आया, दवाइयां दी गई 15-20 दिन, 21 दिन या 19 दिन दीदी कोमा में रही, हम लोग तपस्या करते रहे और दीदी कोमा से आई नहीं। और 28 जुलाई को दीदी शरीर छोड़ा, सुबह 7:30-8 बजे छोड़ा होगा। तो यहां भोग लग रहा था, अचल दीदी, गुरुवार का दिन था, अचल दीदी भोग लगा रही थी, चंडीगढ़ के जोन इंचार्ज थी, तो भोग लगा रही थी। ट्रांस में गई तो वहां देखा कि एक डेड बॉडी पड़ा है और सारे लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, दीदी का देखा। वो ट्रांस से आई तो रोने लगी, और वो कुछ बोले नहीं, क्या हुआ भाई बताओ तो सही। अब तो दीदी को देखा कि वो नहीं है, तो उतने देर में मैसेज आ गया, फोन आ गया कि दीदी शरीर छोड़ दिया। तो अब सबको बड़ा खराब लगा और सब लोग नाराज हो गए कि ये भगवती का काम है, इसने दीदी को ये किया है, तो उसको कुछ किया जाए, कुछ को केस किया जाए। 29 तारीख को दीदी आई, 30 या 29 शाम को दीदी का अंतिम संस्कार हुआ, काफी ब्राह्मण आ गए, सारे ब्राह्मण आ गए, संस्कार हो गया, बहुत शॉर्ट में सुना रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है। और फिर शाम को बाबा, रात को बाबा आ गए, बाबा ने आकर के मुरली चलाया और कहा कि न भगवान की दोष है न भगवती का दोष है, भगवती डॉक्टर का नाम था, न भगवती का, नहीं तो लोग कह रहे थे ना क्यों दीदी को ऑपरेशन करके इंदिरा गांधी के कहने से वो दिल्ली चला गया, इसकी गलती है। तो बोला, बाबा ने कहा कि न भगवान की दोष है न भगवती के दोष है, आपको जितनी दीदी प्यारी थी उतना ही बाबा को प्यारी थी, एडवांस पार्टी में दीदी से सेवा करानी है, इसलिए बाबा बुला लिया, दीदी का यही पाठ था। सब शांत हो गए और फिर बाबा ने आगे का कारोबार कैसे चलेगा, तो बाबा ने दीदी दादी को ये कर दिया और जानकी दादी को बुला करके ज्वाइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया और फिर यज्ञ का कारोबार चलना शुरू हुआ। तो दीदी का महिमा क्या करूं, दीदी दीदी थी और ये तो भगवान का ये है कि सारी हमारी दीदी दादियां ब्रह्मा बाबा सिंध में जन्म हुआ, सब दादियां दीदियां वहां ही हुई, भगवान वहीं आया और वहां से सारा ये हुआ। तो ये भगवान की रचना है। हम लोग लकी हैं कि ऐसे महान हस्तियों के सानिध्य में पले हैं और ये है। तो ये बहुत बड़ा हम अपना भाग्य समझते हैं और भाग्यशाली जरूर हैं। कहाँ बिहार, कहाँ मधुबन और कहाँ दादियों का प्यार संग, तो ये बहुत बड़ा कहानियां। तो और दीदी का प्रैक्टिकल बहुत कुछ है। ये हॉल बन रहा था, बेकरी पार्ट था, दीदी इतनी ऊंची फैमिली के कभी ये नहीं उठाया होगा, पत्थर उठाने हम लोगों के साथ जाती थी। अरे दीदी आप बैठो, हम लोग उठा रहे हैं। नहीं, क्या समझता है, हम ये थोड़ी हैं। भले छोटे उठाती थी लेकिन दीदी जाकर के पत्थर उठाती थी, दीदी जाकर के सब्जी काटती थी, दीदी जाकर के चावल साफ करती थी बैठ करके। क्या नहीं दीदी दादी ने किया होगा, यज्ञ को आज यहां तक लाया है। ये दीदी दादी का कमाल है। दो आत्मा, दो शरीर था, आत्मा दोनों की एक थी। आप दीदी को कुछ बताइए, दादी को पता लग जाता था। हालांकि दीदी बताने नहीं जाती थी। दीदी के रूम में बात कर रहे हैं और फिर दादी के सोचेंगे कि चलो दादी को सुना कराएं, तो दादी कहेगी अच्छा आपने दीदी को ये बताया है ना। अरे भाई दीदी ने सुनाया नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, आपको कैसे आ गया। इतना उनका आपस में गहरा ये था और उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी तपस्या, उनका त्याग, आज हम लोग फल खा रहे हैं। ये है दीदी का जीवन। तो हम लोग दीदी से यही सीखें कि तपस्या करना है, व्याध की वैराग रखनी है और कुछ नहीं। दीदी को जरा भी लगाव झुकाव कुछ भी पसंद नहीं आता था, जरा भी नहीं। किसी का लगाव झुका हो दीदी जरा भी नहीं सहन कर सकती थी। ओके, थैंक यू, ओम शांति। दिल तो करता है कि सुनाते रहे लेकिन घड़ी मानती नहीं है ना, दूसरा सेशन आप लोगों को है।
भ्राता जी का हम एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं।